हृदय फटता चला जा रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत व्रत किया, उपवास किया, बहुत कुछ मैंने धर्म कर्म किए। तुम यदि वन में जाते हो, तुम्हारा जैसा लड़का भी यदि वन में जाता है तो सब किया कराया हमारा व्यर्थ है। इसका मतलब है कि अब हमको केके के सामने छोटा होकर रहना पड़ेगा। देखो तुमको पता नहीं है राम, सौत डाह एक बहुत विचित्र जहर होता है। इस जहर से आदमी हरदम मरता रहता है। इसमें आदमी नहीं, सबसे बड़ी स्त्रियां आपस में इस डाह के अंदर मरती रहती हैं। इसका कोई प्रतिकार भी नहीं है। केकई के पुत्र को यदि राज्य गद्दी मिलती है तो केकई तो बहुत अभिमान में आकर यूं ही हमारा तिरस्कार करती है और तिरस्कार करेगी। इतने दिन तक तो केकई ने एक ही बात कही, हमारे पति हमारे बस में है। अब केकई का अभिमान दुगना होगा कि हमारा बेटा युवराज पद पर है। बेटा हमारी क्या दशा होगी, मेरा तो मरना ही हो गया। ओहो मैं भी कैसी हूं बेटा, क्यों मरना होगा मेरा, मैं यहां रहूं तो मैं यहां रहूंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं चलूं तो मैं भी तुमको ये बात कह सकती हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे, हम तुम्हारे बिना यहां रह नहीं सकते हैं, और यदि हमारे बिना तुम जाते हो तो हम तुम्हारे साथ साथ रवाना हो जाएंगे। लेकिन तुम कहीं जंगल में रहो और हम यहां रहे, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। इतनी देर तक लक्ष्मण जी चुप थे, अब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे माता, मैं अपने क्रोध को बहुत देर से छिपा रहा हूं, राम जी को वन में भेजना मुझे किसी प्रकार उचित मालूम नहीं देता। विषयों में आकृष्ट रहने वाला हमारा पिता यदि राम को वनवास में भेजता है तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि राम का अपराध क्या है। तुम्हारा अपराध सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तुम स्वयं अपराधी हो और उस अपराध का दंड तुम हमारे राम जी को देते हो, ये बात बिल्कुल अनुचित है। वनवास जरूर होना चाहिए पर वनवास केकई का होना चाहिए, वनवास दशरथ का होना चाहिए। राम की आयु वनवास की योग्य नहीं है। दशरथ जी से पूछो आपकी उम्र कितनी है, अभी तक आप महलों में पड़े हो, आप वनवास में क्यों नहीं जाते, वनवास में आपको जाना चाहिए। हे महाराज, यदि आपको दशरथ जी ने राजगद्दी के लिए घोषणा करके घोषित कर दिया है तो कर ही दिया है, चलिए आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजगद्दी पर बैठाता हूँ। ये मेरा धनुष, ये मेरा बाण, कौन यहाँ पर पैदा हुआ है, भरत आएगा भरत को देख लेंगे, शत्रुघ्न है उसको देख लेंगे, और भी कोई उसके पक्षपाती होंगे, मैं एक अकेला सबसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आपका कोई शत्रु यदि आपके सामने आता है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जन्म क्यों लिया है। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्या कार्यम अजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम्। महाराज होना तो ये चाहिए कि दशरथ को और केकई को जेल खाने में डाल दो पकड़ करके। कौन होते हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ राज पंचायती करने वाले, एक कामी पुरुष के हुक्म से आपने उसको धर्म मान लिया, एक कामिनी ने अपने प्रेम पास में बांध करके वरदान की कहानी एक घड़ ली। वरदान आज से पहले किसको मालूम था कि केकई को वरदान मिला, कुछ नहीं, सब ये दशरथ जी की बेईमानी है, केकई की बेईमानी है, अयोध्या में ये बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। दीप्तिम अग्निम अरण्यम वा यदि राम प्रवेक्षति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वम पूर्वम अवधारे। माता कौशल्या जी, यदि राम वन में भी जाएंगे तो पहले मेरा कदम आगे जाएगा, राम यदि अग्नि में कूदेंगे तो पहले मैं कूदूंगा, राम यदि मृत्यु में जाएंगे तो पहले मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। हे माँ मेरे जीते जी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनिष्य पितरम वृद्धम, अभी जाकर मैं बाप से बात करता हूँ, ज्यादा यदि दशरथ जी मेरे ऊपर शस्त्र उठाएंगे तो मैं भी शस्त्र उठा लूंगा। ऐसे समय में शस्त्र उठाने में लक्ष्मण पीछे रहने वाला नहीं है। वृद्ध भावे न कर रही था, हम देखेंगे बुढ़ा है मान जाएंगे ये तो इतना सिर चढ़ गए। हनिषे पितरम वृद्धम कैकेयम कैकेयासक्त मानसम, हम पिताजी की बात नहीं मानते। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के कैकेयी कौशल्या जी पुलकित हो गए, पुलकित होकर के और राम से कहने लगी, राम ऐसा भाई तेरे को मिलेगा, छोटा सा बच्चा है और कैसी बड़ी बात करता है, तुम जिस धर्म को जानते हो क्या लक्ष्मण नहीं जानता, क्या ये लक्ष्मण बेहोशी में बोलता है, तुमको पता नहीं है। नचा धर्म्यम वच श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम, अधर्ममय वचनों को सुनकर के हमारी सौते कितना कितना यहाँ पर अयोध्या के अंदर आचरण कर ली, कहां तक वे बढ़ गई, इसको देखो आज सारा नमूना तुम्हारे सामने है। बड़ी बड़ी तपस्याओं से युक्त होकर के कश्यप नंदन जो है स्वर्ग में गए थे, उनके उनका बड़ा जो है आज पूजन हो रहा है और हम तुम्हारे वियोग के अंदर यहाँ जीते रहे, यह उचित बात नहीं है। अहम प्रायम यहाँ शिष्य न च सक्षामि जीवितुम, तुम यदि जबरदस्ती जाओगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा। और देखो एक बात कहती हूँ पिता ने तुमको कहा कि जाना है, मैं कहती हूँ तुमको यहाँ रहना है, यदि तुम यहाँ नहीं रहोगे पिता के वचनों के अनुसार वन में जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कौशल्या जी की बात सुनकर के राम जी ने कहा कि माता मुझे धर्म संकट में मत डालो, मुझे इस सब कहानी का कुछ पता नहीं था, मैंने मेरे जीवन में पहले से ही सोच रखा है कि पिता की आज्ञा का पालन करना है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से क्या नहीं किया, पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माता का सिर भी उतार दिया था। पिता की आज्ञा न मानने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं होता, वो क्लीब होता है। मैंने अभी पिताजी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठीक है मैं आज चला जाऊंगा, अब इस बात को मैं बदल नहीं सकता हूं। नाहम धर्मम अपूर्वम थे प्रतिकूलम प्रवर्ते, मैंने कभी भी आपके सामने अधर्म की बात कही नहीं, आगे कहने का विचार भी नहीं है। मैं यदि पिता की बात का पूरा न करूं तो मेरे जैसा कोई जो है हल्का प्राणी नहीं होगा, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। मां तुम अपने आदेश के अंदर थोड़ा परिवर्तन करो। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने कि लक्ष्मण तुम्हारा तो मेरे में बड़ा स्नेह है, लेकिन देखो तुमने जो शब्दावली का प्रयोग किया है राम अपने पिता के लिए, पिता पिता ही होता है जीवन में, माँ बाप और गुरुजन यही तो है हमारे लिए सब कुछ, इनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए। देखो एक बात कहूं लक्ष्मण, तुम हमारे साथ चलना नहीं, क्योंकि यहां कैकेयी भरत को राजगद्दी पर बैठाएगी और भरत जाने पिता के साथ में क्या बर्ताव करेंगे, तुम रहोगे ना तो भरत तुमसे डरता रहेगा, कैकेयी भी डरती रहेगी, सब लोग तुम्हारे से डरेंगे, इसलिए धर्मम आश्रय, धर्म का आश्रय लो, मा तेक्ष्णम क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध के अंदर मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। और माता कौशल्या से कहा कि माता देखो मैं 14 वर्ष के बाद यहाँ आ जाऊंगा, पिता की आज्ञा को मैं कैसे कहूं कि मुझे मां ने मना कर दिया इसलिए वन में नहीं जाऊंगा, ऐसा कहूं क्या ये अच्छा लगेगा, यदि मेरे भाग्य में वनवास लिखा हुआ है तो उसको कैसे टाला जा सकता है, इसलिए आप खूब अच्छे ढंग से विचार करो मां, मुझे आप वन में जाने के लिए छुट्टी दे, आप मुझे रोको मत। कौशल्या ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए जैसे पिता है वैसे मैं भी तो हूं, यथैवते पुत्र पिता तथा हम, उनकी आज्ञा होती है वैसे मेरी भी तो आज्ञा होती है, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुम कैसे करते हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, एक क्षण भी मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं ये बात तो कहूंगी ना कि तुम यहां रहो। तब राम जी महाराज के मन में ये जब कौशल्या जी की बात आई तो उन्होंने फिर कौशल्या जी से कहा और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा पराक्रम बड़ा विलक्षण है, कोई तुम्हारे पराक्रम के सामने ठहर नहीं सकता है। पर एक बात है, मनुष्य का जन्म यहाँ क्यों हुआ है इस पर विचार करो। मैं यहाँ राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं आया हूँ, मेरे बाप दादे भी जो यहाँ जन्म लिए है वो राज्य प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य थोड़ा ही है, जिसके द्वारा धर्म का अभिवर्धन होता है उसी के द्वारा ही कल्याण होता है। हम सब कल्याण के लिए आए हैं और कल्याण धर्म के द्वारा होता है, और पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, इनका पालना एक धर्म होता है। उस धर्म में किसी प्रकार से आंच नहीं आने देना चाहिए। परंतु जैसा माता ने कहा है कि मेरी भी आज्ञा का एक धर्म है, निस्संदेह धर्म है, परंतु आप किस बात को किस ढंग से कहना चाहती हो। पिता वचनों में बंधे हुए थे, वहां उनके द्वारा वचन निकले हुए हैं, आप वचनों में बंधे हुए नहीं हो, आप पुत्र मोह के अंदर ये बात बोल रहे हो। अच्छा बताओ, पिता का कोई मुझे यहाँ से भेजने में चित्त प्रसन्न है? चित्त प्रसन्न नहीं है। तो जिस बात का पालन करना पड़े और चित्त में अनुकूलता न दिखे वही तो तपस्या होती है। पिता जैसे मेरे वियोग में तपस्वी बन रहे हैं, ऐसे आपको भी मेरे वियोग में तपस्वी होना चाहिए। आपको मेरे साथ चलने के लिए जो बात कही उचित यूं मालूम नहीं देती है, क्योंकि आपके पति यहाँ पर विराजमान है। स्त्री के सामने पति बड़ा होता है, पुत्र का प्रेम बड़ा नहीं होता। पुत्र तो एक पालने योग्य छोटा बच्चा होता है, बच्चा। तो आपका पुत्र पालन धर्म और एक पति धर्म, दोनों में पति धर्म बड़ा है। पुत्र के अंदर तो मोह होता है, पति की सेवा ये धर्म है, इसलिए धर्म और मोह में धर्म का स्थान ऊंचा है। आपके पति जीवित है, आप विधवा नहीं है। यदि आप विधवा होती तो मेरे साथ में आपको ले चल सकता था, लेकिन इस समय आप सधवा हैं, आपको पति के पास में रहना चाहिए। राम जी ने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, अपने अंदर हर्ष, शोक, रोष, अवमान, इन सब को निकाल करके शांति से सोचो। कल तक क्या बात थी, मेरा अभिषेक होगा, लेकिन कल का समय भाग्य हमारे अनुकूल था, लेकिन रात में जब हमारा भाग्य में समय अनुकूल नहीं हुआ तो एकदम पासा बदल गया और हमारे अभिषेक टल गया। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य के भाग्य से चीजें मिलती हैं और भाग्य से वे नहीं भी मिलती हैं। देखो, परलोक भयात भीतो निर्भयोस्तु पिता मम, मुझे आज वन में जाने दो। पिता के मन में देखो, केकी ने बात बिल्कुल सत्य कही है कि जितनी देर तुम यहाँ ठहरोगे पिता के मन में संदेह पैदा होगा, और पिता के मन में संदेह होगा और केकी के मन में भी संदेह पैदा होगा और प्रजाजन में भी संदेह पैदा होगा। इसलिए ये हमारा प्रारब्ध, हमारा दैव, हमारा भाग्य हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमको वन में जाना है। इसलिए लक्ष्मण, भाग्य की प्रतिकूलता को बड़े प्रेम से सहना चाहिए। भूतपूर्वम विशेषो वा तस्या मई सुते पिवा। अब देखो, ये दैव नेम तो क्या है, कभी भी अपने जीवन में केकई अपने से प्रतिकूल चली क्या? आज तक केकई कभी प्रतिकूल नहीं चली। मैंने केकी को कुछ भी कह दिया तो केकी ने बड़े प्यार से मुझे छाती से लगाया। केकी तो हरदम मेरे पर कृपा करने वाली। आज क्या हो गया? ये भाग्य है। ये कष्ट दैवेन सौमित्रे। देखो, आदमी सबसे युद्ध कर सकता है तो कष्ट दैवेन, भाग्य से कौन युद्ध कर सकता है, भाग्य से कौन मुकाबला कर सकता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष हो गए हो, उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा था, लेकिन भाग्य के द्वारा ऐसी बातें आई तो बेचारे वो काम नहीं कर सके जो उनको सोचना था। इसलिए एक बात है, जो ये अभिषेक की सामग्री है ना, इसमें बढ़िया बढ़िया ये घट है, माने मटके जिनमें पानी है, इनके द्वारा मेरा वनगमन का अभिषेक करवाओ, तुम मेरा साथ दो, और तुम जाकर के कहो कि नहीं, यदि दशरथ जी ने राम जी को वन में भेजने की प्रतिज्ञा की है तो राम जी वन में जाएंगे, हम राम जी को यही सलाह देंगे कि आप वन में जाइए। इसलिए न लक्ष्मणास्मिन मम राज्य विघ्ने माता यवि अभिविशंकितव्या, तुम यदि आकर बाण लेकर खड़े हो जाओगे और मेरा अभिषेक करने की बात कहोगे तो बताओ कितना संदेह पैदा होगा पिता दशरथ जी को और पिता और माता कैकेयी को। दशरथ जी के मन में किस बात का दुख है लक्ष्मण? पिता के मन में इसी बात का दुख है ना कि ये राम तो सुनते ही वन में चला जाएगा, राम के बिना मैं कैसे रहूंगा। ये जो इनके मन में दुख है, यदि जबरदस्ती से राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो इनके सोचे हुए इनकी कल्पना पर तो एक विपरीत असर पड़ेगा ना, इसलिए बात उचित नहीं है। ये सोचना इनका सही है कि राम तो चला जाएगा तो हमारे प्रति ऐसी भावना है, ये भावना बदलेगी तो ठीक नहीं है। हमारे भाग्य में यदि ऐसा ही है तो भाग्य को बड़े प्रेम से बर्दाश्त करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। भाई ये भाग्य की बात आई तो लक्ष्मण जी की एकदम बिगुटी टल गई। और जिस प्रकार से एक सिंह का बच्चा होता है, सिंह का बच्चा वो क्रोध में दहाड़ता है, ऐसे लक्ष्मण जी दहाड़ते हुए बोले आंख ऊंची करके और अपना हाथ ऊंचा करके, कभी अपने गर्दन को झुका करके और कभी अपने होठ है क्रोध के कारण से होठ को थोड़ा गोल करके, देखा नहीं ऐसा करके, और कभी अपनी जीभ है उस जीभ को वे ऊपर नीचे लेकर के, ऐसा सुंदर क्रोध उनका चेहरे पर छा रहा था। देखो क्रोध भी सुंदर हुआ हो क्योंकि इस क्रोध के अंदर राम जी का प्रेम छिपा हुआ है। क्रोध सुंदर कब होता है? जब भगवान के प्रेम के साथ लपटा हुआ होता है, भगवान के प्रेम में लिपटा हुआ क्रोध बड़ा अच्छा लगता है, भगवान के प्रेम में लिपटा हुआ काम अच्छा लगता है, लोभ अच्छा लगता है, अहंकार अच्छा लगता है। भगवान के प्रेम के बिना कोई अहंकारी पुरुष चलता है तो वो बुरा लगता है। और अच्छे अच्छे संत आप ये भाग्य की बात कैसे बोलते हैं? आपके मन में इस बात का भय है कि यदि मैं किसी प्रकार से यदि यहां रह गया, राज्य युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो गया तो सारा संसार ये कहेगा कि जो अपने बाप को प्रसन्न नहीं कर सका, जो अपनी माँ को प्रसन्न नहीं कर सका, वो सारे प्रजा को कैसे प्रसन्न करेगा। इस बात का ना दुख है आपको? ऐसा लोग सोचेंगे, इस बात का आपको दुख है। और आपको इस बात का भी दुख है कि दशरथ जी क्या सोचेंगे, कैकेयी क्या सोचेगी। ये बात महाराज आप किनके विषय में सोच रहे हैं? आप इनको प्रसन्न कर रहे हैं, पापियों को राजी कर रहे हैं आप? पापयो से कथम नाम है तयो शंका न विद्यते। पापी व्यक्ति पाप से प्रसन्न होता है, पापी व्यक्ति धर्म से कभी प्रसन्न नहीं होता। आप धर्मात्मा हैं परंतु आप भाग्य के ऊपर इतना अवलंबित हो रहे हैं। भाग्य का काम कायरों का होता है। कायर आदमी हाथ पर हाथ धरे बैठे कहते हैं कि भाग्य में लिखा तो होगा। नहीं नहीं, भाग्य को कैसे बदला जाता है आज दुनिया में मैं करके बता सकता हूँ। ये मेरे पास धनुष्बाण, आपको राजगद्दी पर बैठा हूँ, आ जाओ। कोई पुरुषार्थवादी आता हो तो आ जाओ, ये पुरुषार्थवादी मैं हूँ। कोई भाग्यवादी आ जाए तो आ जाओ, भाग्य आदि। आप कहते हो भरत के भाग्य में राजगद्दी है, मैं वहां खड़ा रहता हूँ। देखो कौन भरत को राजगद्दी पर बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता। और आपको राजगद्दी से कौन हटा सकता है? अद्य में पौरुषम वीक्ष्य, आज मेरा पौरुष लोग देखेंगे। और दैवम हतम, और ये भाग्य नाम की चीज को कुचलता हुआ देखेंगे। लेकिन अब आप तैयार नहीं, उसका मैं क्या करूं? इसलिए आर्य पुत्रा करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि, आपको वन में जरूर जाना चाहिए पर आज नहीं। आपके बेटे खूब अच्छे योग्य हो जाए, आपके बेटे राज्य का काम करने लायक हो जाए, आप जाओ उनको राजगद्दी दे, वन में चलो। कौन मना करता? हम थोड़ी कहते हैं कि आप यहाँ पर जो है अयोध्या के अंदर ही, महलों के अंदर ही बैठे रहो। हम ऐसा नहीं चाहते। आज राज्य की लिप्सा से हम आपको नहीं बोलते कि आपको राज्य मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, परंतु एक अधर्म पूर्वक जो आपको राज्य गद्दी से हटाने की बात करते ही हमको ठीक नहीं लगता है। वरदान की बात आज तक हमने सुनी नहीं थी। महाराज बड़ी राजनीति हो रही है, आपके पिता ने बड़ी राजनीति रची है, रातों रात ये स्वांग कर लिया कि देखो वरदान की बात छेड़ दो और तुम्हारे बेटे भरत को हम राजगद्दी दे देंगे। ये सब दशरथ की एक कूटनीति है और कुछ नहीं है। हम दशरथ की कूटनीति चलने नहीं देंगे। मनगढ़ंत बात कर ली। अरे वरदान की बात थी तो लोगों को पता तो चलना चाहिए। इन दो को ही कैसे पता है? बहुत पुरानी आपके जन्म से पहले की बातें ये है, फिर पता क्यों नहीं है इन लोगों को? ये सब बातें बनाने की। कौशल्या बोलने लगी कि बेटा सुनो राम, मई जातो दशरथात कथम उनछे न वर्ते। तुम हमको एक तरह से अलग क्यों करते चले जा रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में दशरथ और कौशल्या दो ही कैसे आ रहे? दशरथ और केके दो ही कैसे आ रहे? हम भी तो तुम्हारे कुछ लगते हैं ना। कथम से भोक्षते रामो। तुम देखो यहाँ पर बड़े प्रेम से सैकड़ों दास दासियों को भोजन कराने के बाद भोजन करते थे। तुम्हारे यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करते थे, उसके बाद तुम भोजन करते थे। तुम जंगल के अंदर फूल पत्ते फल खाओगे? ये कहाँ कैसे संभव है? और हम यहाँ महलों में आनंद से रहेंगे? माँ है वो महलों में आनंद से भोजन करेगी और बेटा जंगलों के अंदर फल फूल खाएगा, कैसे खाएगा, कब खाएगा कुछ पता ही नहीं। ये कहाँ माँ बेटों का संबंध देखा होगा राम? ऐसी कभी कोई तुमने बात सुनी है क्या? तुम हमको कहते थे हो कि पति के पास रहो, पति का प्रेम बड़े ही है, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन पुत्र का तो देखो ना, पुत्र कहाँ है अभी? कभी किसी गाय को देखा कि अपने अपने बछड़े से अलग रह करके कोई गाय सुखी रह सकी? गाय अच्छी हमसे तो कि जो अपने पुत्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देती है। ओहो क्या हमारे अयोध्या का दिन आया है। राम जी महाराज ने कहा कि देखो आपको वास्तव में अपने पति की सेवा करनी चाहिए और यदि पिता ने हमको आदेश दिया है तो उसमें किसी प्रकार से अपने को विचार नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो पिता गुरु है, माता गुरु है, आप भी हमारे गुरु हो। यदि ये बातें आपकी आपस में हो जाती और आप बराबर में बैठ करके विचार विमर्श करते तो अलग बात थी। मैं पिता को वचन देके आया हूँ और अब मैं कह दूँ साहब मुझे माँ ने मना कर दिया, मैं नहीं करता, ये राम के लिए संभव कैसे हो सकता है? आप विचार कीजिए। कौशल्या ने कहा कि ठीक है भाई, ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती, मैं इतना ही कह सकती हूँ मुझे भी तुम अपने साथ में ले चलो। राम जी ने कहा कि देखो ये साथ में चलने वाली बात आपकी बैठेगी नहीं कौशल्या माता जी। अच्छा आप सोचो कि आप कह रहे हो कि बेटा जंगल में गया, माँ पीछे ऐसी रहेगी तो आप मेरे साथ रहोगे, आपके पति आप पीछे रोते रहेंगे? ये आपके लिए भी तो बात संभव है। आपके पति तो यहाँ रोते रहे और आप मेरे साथ चलोगे, ये कैसे संभव है? भरतश्चापि धर्मात्मा। देखो इसलिए एक तरह से अपने नीति बना लो। भरत है वो धर्मात्मा है, भरत आपका बहुत आदर करता है, मेरी माँ होने के कारण से आपका अतिशय आदर करता है और वृद्ध पिता दशरथ जी का भी आदर करता है, इसलिए वो आपका आदर करेगा, आपके पास में रहेगा। पिताजी ने यदि वरदान दिया है तो उस वरदान का काम जो है ये 14 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसलिए स्त्री का ये खास कर्तव्य होता है कि उसके लिए पति है उसकी प्रसन्नता में अपना जीवन लगा देना चाहिए। कौशल्या ने कहा अच्छी बात है बेटा, गच्छ पुत्र त्वम एकाग्रो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी बात वास्तव में निरर्थक तो है नहीं, मैंने मोह के कारण से तुमको कह दिया, अब जाओ तुम जल्दी आओ, 14 वर्ष के वनवास के बाद में हम जो है उसके बाद तुम्हारे दर्शन करेंगे। इस प्रकार से मांगलिक सामग्री लेकर के और माता कौशल्या ने बार बार उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर के कहा कि बेटा तुम्हारी माता के अंदर पिता के अंदर ऐसी धर्म बुद्धि बनी रहे और जो है जंगल के अंदर पशु है पक्षी है सब तुम्हारी रक्षा करें, साध्य है विश्वदेव है मरुदगण है धाता है विधाता है ये सब तुम्हारा कल्याण करें, 6 ऋतु है वो तुम्हारे कल्याण करें, ये वत संवत्सर है ये तुम्हारे कल्याण करें, रात्रि के देवता दिन के देवता आपकी रक्षा करें, भगवान कार्तिकेय आपकी रक्षा करें, सप्तर्षि और नारद आपकी रक्षा करें, पर्वत समुद्र वरुण अंतरिक्ष पृथ्वी वायु सब तुम्हारी रक्षा करे, सब दिशाएं तुम्हारी रक्षा करे, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, राक्षस है पिशाच है ये भी तुम्हारी रक्षा करें, सर्प तुम्हारी रक्षा करें और सिंह तुम्हारी रक्षा करें, हाथी तुम्हारी रक्षा करें, जो भैंसे हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, वो तुम्हारे से कभी भी द्वेष न करें, जो नरमांस भक्षी है ऐसे रुद्र रूप वाले वो भी तुम्हारी रक्षा करते रहे, सब तुम सबसे तुम्हारी रक्षा हो। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन करवाया और राम की टीका कर दिया। राम को उन्होंने प्रेम से माला पहनाई और उसके बाद राम माता यशस्विनी ने राम जी से कहा कि हे राम, जो मांगल कार्य अदिति ने इंद्र के लिए किया था और अंत में इंद्र ने वृत्रासुर का नाश किया था, वो सब मांगलिक पाठ मैंने तुम्हारे लिए करवाया है। अमृत की प्रार्थना, अमृत उत्पादन के समय में इंद्र ने जिस प्रकार भगवान की स्तुति की थी, वो स्तुति मैंने भगवान से की है, वो स्तुति तुम्हारे लिए लागू हो। इस प्रकार से सब प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के कहा कि बेटा, वाचापि प्रविष्टेव वाग मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया, कहा कि तुम्हारा सदा आरोग्य भाव बना रहे, तुम सदा वहाँ पर सुखी रहो, तुम्हारे दुख की कल्पना जिस किसी के भी हृदय में पैदा होती हो वो वहीं पर दुख का भाव समाप्त हो जाए। अब तो बस यही बात देखना चाहते हैं कि कब 14 वर्ष बीते और कब तुम यहाँ आओ और कब हम तुम्हारे यहाँ पर राज्याभिषेक का दर्शन करें। राम जी महाराज ने कौशल्या के चरणों में बारम्बार प्रणाम किया और कौशल्या ने राम जी महाराज को अश्रुपूर्ण नेत्रों से राम राम कहकर के उनको विदा किया और राम जी महाराज वहां से प्रस्थान किए और वे प्रस्थान करके सीधे अपने महल की ओर आए। महल की ओर आए तो वहां सीता जी अभी राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी और सीता जी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राम और लक्ष्मण दोनों जब वहां पर पहुंचे हैं तो उस समय में राम जी का चेहरा थोड़ा उतर गया, राम जी के चेहरे पर म्लानता है। किस बात की? इस बात की नहीं कि हमको वन में जाना पड़ेगा, ये बात की नहीं, तो मेरे वन गमन की बात से इनको दुख होगा, उस दुख के कारण से दुख हो गया। देखो बड़े पुरुष महापुरुष होते हैं ना, वो कभी 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 संकट के समय में वे रोते हैं। रोते किस बात को लेकर? इस बात को लेकर के नहीं, कोई संकट आ गया, इस बात को लेकर रोते हैं कि इस विषय में अमुक अमुक का कितना नुकसान हो गया, उस नुकसान के कारण से उनके मन में दुख होता है। एक महापुरुष का देहांत हुआ और एक महापुरुष रोने लगा। शास्त्रों में तो बात आती है कि महापुरुष के जाने के बाद सभ्य व्यक्ति रोते नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं रोते कि भाई मरे गुरु रोवे चेला तो उनको क्या ज्ञान मिला, इसलिए वो ज्ञानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे ज्ञानियों के भी कभी कभी उनके वियोग में उनको रोना आता है। वो रोना किस बात का? वो रोना अपने स्वार्थ का नहीं है, वो रोना है कि अमुक के अभाव में दुनिया में कितनी किस प्रकार से एक कष्ट की बात होगी, उस कष्ट से दुख होता है उनको, दुनिया के कष्ट से। इस प्रकार से राम जी महाराज के मन में आई बात कि अब सीता को मैं कहूंगा और सीता दुखी होगी, उस दुख से राम जी थोड़े यू अवांगमुख है। सीता जी ने राम जी का चेहरा देखा, महल में प्रवेश करते ही राम जी का चेहरा देख के सीता जी खड़ी होकर जो है राम जी के पास में गई और राम जी से कहा कि महाराज, आज तो पुष्य नक्षत्र है ना, बृहस्पति का उसमें प्रवेश है ना, क्या कारण है अभी तक आप राजगद्दी पर बैठे नहीं? ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन का शब्द मैंने सुना नहीं, आपके पीछे छत्र लगा नहीं, चवर लगा नहीं, आपके पास में कोई आसन लेकर के आया नहीं, लोग आपके लिए मांगलिक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपकी जय जयकार नहीं हो रही है, आपके आगे पीछे घोड़े नहीं है, आपके आपके साथ में रथ नहीं है, आपके साथ सेनापति नहीं है। मैं तो एक राजपुत्री हूं ना, राजाओं के यहाँ क्या होता है सब जानती हूँ, लेकिन आपके मुख के ऊपर बड़ी म्लानता है, प्रसन्नता है, क्या बात है, क्या हो गया? जब इस प्रकार से सीता ने कहा तो राम जी महाराज और गंभीर हो गए। गंभीर होकर के राम जी ने कहा कि सीते तुम बड़ी कुलीन हो, राजाओं की सब शिष्टाचार की बात जानने वाली हो, कुछ बात हो गई, क्या हुआ प्रणाम? कहा कि देखो